आज हमारे पास एक बहुत ही, मैं कहूंगा, एक गहरा दस्तावेज है। परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों से अपेक्षा।
जी,
यह मार्च 1984 में पूज्य गुरुदेव ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को एक संदेश के तौर पर दिया था।
बिल्कुल, और इसका जो समय है वो इसे और भी खास बना देता है।
हाँ, मतलब उनके सूक्ष्मीकरण जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रयोग से ठीक पहले।
ये सिर्फ एक लेख नहीं है।
नहीं, ये एक तरह की हैंडबुक है कि एक लोक सेवी की सोच, उसकी जीवन शैली कैसी हो।
और आज हम इसी के सातवें पैराग्राफ के मूल भाव को समझने की कोशिश करेंगे।
जी, जो शायद इस पूरे दस्तावेज का उसका दिल है।
हाँ, यहीं पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है।
पूज्य बोधदेव शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। वो कहते हैं, काम क्या करना पड़ेगा?
और फिर कहते हैं, ये निर्देश तो समय समय पर मिलते रहेंगे।
मतलब जिस चीज को हम सबसे जरूरी समझते हैं, द वॉट, द एक्शन प्लान, उसे वो एक तरह से किनारे रख रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आमतौर पर किसी भी मिशन में क्या करना है वही सब कुछ होता है। टू डू लिस्ट होती हैं।
हाँ, टास्क होते हैं।
लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो तो अस्थाई हैं, वो बदलेंगी। असली चीज वो कुछ और है। वो कर्म और भावना के बीच एक बहुत साफ लकीर खींच रहे हैं।
तो अगर काम इतना जरूरी नहीं है तो फिर असली कसौटी क्या है? किस चीज पर ध्यान देना है?
असली कसौटी है समर्पण भाव।
समर्पण भाव,
जी। वो साफ कहते हैं कि जिस समर्पण भाव को लेकर कोई इस रास्ते पर चला था वो बना रहना चाहिए। और ये सिर्फ जोश या उत्साह नहीं है।
नहीं,
इसमें निष्ठा है, अहंकार का शून्य हो जाना और मिशन के प्रति एक अटूट विश्वास, ये सब कुछ शामिल है। यही नींव है।
बिल्कुल, और वो इस पर कितना जोर देते हैं ये उनकी अगली ही लाइन से पता चलता है।
हाँ,
उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे। मतलब सिर्फ उस शुरुआती भाव को बनाए रखना वो काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, उसे हर रोज और मजबूत करना है।
और आगे वो लिखते हैं, कहीं राई रत्ती भी कमी ना पड़ने पाए।
ये जो भाषा है,
ये भाषा दिखाती है कि आंतरिक प्रतिबद्धता वो किसी भी बाहरी काम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसे हम एक पेड़ की तरह समझ सकते हैं।
अच्छा।
जो हमारे काम है वो पत्ते और शाखाओं की तरह है।
वो मौसम के साथ बदलेंगे।
हाँ,
नए आएंगे, पुराने झड़ जाएंगे।
जी, लेकिन जो समर्पण भाव है वो उस पेड़ की जड़ है। अगर जड़ मजबूत है और लगातार गहरी हो रही है तो पेड़ हर हाल में खड़ा रहेगा।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये व्यावहारिक है? क्या सिर्फ भाव से बड़े बड़े मिशन सफल हो सकते हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ पूज्य गुरुदेव कर्म को नकार नहीं रहे हैं।
अच्छा।
वो कर्म और भावना के संतुलन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता वो भावना को दे रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि
अगर आपकी भावना सही है, आपका समर्पण सच्चा है, तो सही कर्म और सही दिशा वो अपने आप मिल जाएगी।
अच्छा, तो भावना को प्राथमिकता देने का मतलब कर्म को छोड़ना नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे सही ऊर्जा और मकसद देना है। बिना सही भाव के किया गया बड़े से बड़ा काम भी वो खोखला हो सकता है।
और जब हम इस पूरे दस्तावेज को देखते हैं तो ये सातवां पैराग्राफ अकेले नहीं खड़ा है।
जी बिल्कुल, ये एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा है। दस्तावेज की शुरुआत में वो शरीर के हर अंग, आंख, कान, हाथ, इन सबसे अपेक्षाओं की बात करते हैं।
हाँ, जैसे आंखों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो।
जी, वो सब बाहरी अनुशासन की तैयारी है। लेकिन सातवें पैराग्राफ में आकर वो इन सब बाहरी चीजों को आंतरिक स्थिति से जोड़ देते हैं। वो एक तरह से कहले हैं कि ये सारा अनुशासन तभी सार्थक है जब अंदर का समर्पण भाव मजबूत हो।
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी सीख निकल कर आ रही है वो ये है कि किसी भी बड़े लक्ष्य के रास्ते में क्या करने से ज्यादा जरूरी है
क्यों और किस भावना के साथ किया जा रहा है।
हाँ,
बाहरी काम तो बस साधन है, असली साधना तो वो भीतर की है।
और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक मिशन पर ही नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है।
सही कहा।
ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम भी अपने काम में, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, सिर्फ टास्क की लिस्ट पूरी करने में इतने उलझ गए हैं कि हम उस शुरुआती जुनून और मकसद को ही भूल गए हैं।